श्रोताओं, आज की बात में आपका स्वागत है। कमर अब्बास का सलाम स्वीकार करें। श्रोताओं, आज की चर्चा में हम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के अनावरण पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में उनकी 182 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। गुजरात के नर्मदा जिले में बनी यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। 182 मीटर की ऊंचाई के साथ इसका वजन 1700 टन, पैर की ऊंचाई 80 फुट, हाथ की ऊंचाई 70 फुट, कंधे की ऊंचाई 140 फुट और चेहरे की ऊंचाई 70 फुट है। इस प्रतिमा का निर्माण भारत के विख्यात शिल्पकार राम वी सुतार की देखरेख में हुआ है। प्रतिमा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक छोटे द्वीप पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सरकार स्टैचू ऑफ यूनिटी को पश्चिम भारत के सबसे शानदार पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। वहां पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई और सुविधाएं बनाई जा रही हैं। पर्यटक इस स्थान पर रुक भी सकेंगे। भारतीय सूत्रों के अनुसार प्रतिमा स्थल पर लेजर शो चलेगा, पास में ही म्यूजियम, रिसर्च सेंटर और फूड कोर्ट होगा। प्रतिमा पर कमर से ऊपर लेजर शो के जरिए सरदार पटेल की जीवन यात्रा भी दिखाई जाएगी। सरदार म्यूजियम भी होगा, जहां पटेल से जुड़े 40,000 दस्तावेज, 2,000 दुर्लभ फोटो होंगे। प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया।
आपकी भारत भक्ति ही और यही भारत भक्ति की यही भावना है जिसके बल पर हजारों वर्षों से चली आ रही हमारी सभ्यता फल रही है, फूल रही है। साथियों, किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज ये वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है। आज का ये दिवस भी भारत के इतिहास के ऐसे ही कुछ क्षणों में से एक महत्वपूर्ण पल है।
हालांकि इस प्रकार से प्रतिमा के स्थापित किए जाने का विरोध भी हो रहा था और विपक्षी पार्टियों ने कई पहलुओं से इसका विरोध किया, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसे चीन से संबंधित बताया।
सरदार पटेल जी की मूर्ति बन रही है और वो भी चाइना में बन रही है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होगा, ये शर्म की बात है। या चाइना में रोजगार मिलेगा या फिर हिंदुस्तान में रोजगार मिलेगा, और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बहाने दिए जाते हैं कि भैया अभी हो रहा है, अब होगा, अब होगा, अब होगा, मगर हो नहीं रहा है।
राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की और संबित पात्रा ने माफी तक की मांग की।
जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के लिए किया है वो आपत्तिजनक है, वो खेदजनक है। चाइना के साथ कंपेयर करते हुए ये कहना कि जिस प्रकार जूतों के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ है, ठीक उसी प्रकार सरदार पटेल की जो स्टैचू बन रही है, जो वर्ल्ड की सर्वाधिक बड़ी मूर्ति है, वह भी उसी प्रकार मेड इन चाइना है। देखिए, जूतों के साथ इस प्रकार कंपैरिजन करना ये बहुत ही आघातजनक है। करोड़ों लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, न केवल गुजरात के अपितु भारतवर्ष के प्रत्येक उस भारतीय जो कि जानता है कि सरदार पटेल जी ने किस प्रकार का एक विराट काम किया है भारतवर्ष के लिए, उसके लिए बहुत चिंतनीय विषय है। राहुल जी को इसके लिए खेद जताना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए।
सरदार पटेल की इस मूर्ति को स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है। इसके अनावरण से पहले इसका विरोध कर रहे सभी आदिवासी कार्यकर्ताओं और नेताओं को गिरफ्तार किए जाने की भी सूचना है। इस प्रतिमा के निर्माण प्रोजेक्ट से प्रभावित होने वाले 72 गांव के करीब 75,000 आदिवासियों ने प्रतिमा के अनावरण का विरोध करने की घोषणा की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार मूर्ति के अनावरण से एक दिन पहले मंगलवार को गुजरात पुलिस ने नर्मदा जिले से तकरीबन 13 आदिवासी कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया था। आदिवासी नेताओं ने ऐलान किया था कि 72 गांवों में 31 अक्टूबर को खाना नहीं पकेगा। बहरहाल, खाना पके या ना पके, मूर्ति प्रतिमा का अनावरण हो गया है, लेकिन स्टैचू ऑफ यूनिटी कही जाने वाली इस प्रतिमा पर अलग तरह से विवाद भी पैदा हो गया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने तो अलग ही तरह से बात की और सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के दृष्टिगत इसके नाम पर आश्चर्य जताया।
11 अगस्त 1947, आज़ादी से 4 दिन पहले, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली में एक तकरीर की थी। मैं उसको दो जुमले आपको सुना दूं। We took these extreme steps after great deliberation. In spite of my previous strong opposition to partition, I agreed to it because I was convinced that to keep India united, it must be divided.
हामिद अंसारी के इस बयान के बाद भारतीय मीडिया में कड़ी प्रतिक्रिया प्रकट की गई।
Former Vice President of India, Hamid Ansari, has sparked a massive debate just days ahead of the nation observing Unity Day, which is being marked across the nation to commemorate Sardar Vallabhbhai Patel's birth anniversary. Sardar Patel is known as the unifier of India, but Hamid Ansari believes that he is just as guilty as Pakistan's founder Muhammad Ali Jinnah in the conspiracy to partition India.
Jinnah ji, that's what why there is a legacy of Jinnah. Hamid Ansari is part of that legacy of Jinnah.
Okay, okay.
British government.
Okay, okay.
मीडिया में जारी इस बहस और चर्चा से हटकर प्रसिद्ध बुद्धिजीवी डॉक्टर पुनिया ने इसका विरोध अलग अंदाज में किया।
अब ये बड़े संयोग की बात है कि इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिया गया है और ये मूर्ति का अनावरण उस समय हो रहा है जबकि गुजरात से उत्तर भारतीय लोगों को भगाया जा रहा है, एक बहुत खतरनाक तरीके से भगाया जा रहा है। सरदार पटेल ने पूरे देश की एकता के लिए, सभी प्रांतों की एकता के लिए, रियासतों की एकता के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। खैर, दूसरा, सरदार पटेल का सबसे महत्व जो चालू हुआ पूरे देश के आंदोलन में, उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी शुरुआत जो थी वो किसान बारडोली के किसान आंदोलन से थी। सरदार पटेल किसानों के वेलफेयर के लिए, उनकी बेहतरी के लिए समर्पित व्यक्ति थे। उन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और आज जब उनकी मूर्ति का अनावरण हो रहा है तो हम देख रहे हैं कि देश में किसानों की आर्थिक व्यवस्था कितनी खराब है और ये लगातार खराब परिस्थिति जो है कई सालों से चल रही है, पिछले 4 सालों में उससे पहले से और गिरावट आई है। तो ये सरदार पटेल को जो महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है, एक उसमें इसमें कोई शक नहीं है कि देश के सबसे बड़े नेताओं में सरदार पटेल सबसे आगे हैं। गांधी के शिष्य के रूप में नेहरू और पटेल, इन दोनों के नाम सबसे पहले आते हैं। आज तीसरी विडंबना ये देखने को आ रही है कि जहां एक तरफ ये प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सरदार पटेल की ये मूर्ति चाइना से बनवा कर लाई गई है। अब चौथा इसी में यही किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि नेहरू और सरदार पटेल के बीच में द्वंद्व को सामने रखा जाए, बताया जाए सरदार पटेल की नीतियाँ सही थी, नेहरू की नीतियाँ गलत थी, जबकि लगातार इसके रेफरेंसेस हैं। सरदार पटेल बार बार इस बात को कहते हैं कि नेहरू मेरे नेता हैं और मैंने और नेहरू ने, हम दोनों ने महात्मा गांधी के चरणों पर बैठकर राजनीति सीखी है, देश के लिए काम करना सीखा है, हम दोनों में किसी प्रकार के कोई मतभेद का सवाल ही नहीं उठता। खैर, दोनों बड़े नेता थे, दोनों के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ थी। जहाँ सरदार पटेल ने देश की रियासतों को एक करने के लिए कोशिश की, वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की आर्थिक व्यवस्था, औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल नीतियाँ, विदेश नीतियों की ऐसी नींव रखी कि जिससे आगे चलकर भारत का विकास हो। तो खैर, हम सरदार पटेल को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं, पर साथ ही ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके जो सिद्धांत थे देश में सभी लोगों की एकता, उसको आज जो तोड़ा जा रहा है धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, उससे ऊपर उठकर सरदार पटेल जी के सिद्धांतों के आधार पे हम देश को चलाएं। और आज ज़रूरी ये है कि उनकी मूर्तियों से ज़्यादा उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करें। कई बार ये भी सवाल उठता है कि अगर आज सरदार पटेल ज़िंदा होते तो क्या वो अपनी मूर्ति बनाने के प्रोजेक्ट को सैंक्शन देते? शायद उनका इशारा होता कि मूर्तियां बनाने के बदले इस पैसे से देश के किसानों का भला करो, इस पैसे से देश के गरीब लोगों के विकास की कोशिश करो, ऐसा मुझे लगता है। तो खैर दोस्तों, हम इस बात पर आना चाहते हैं कि मूर्तियों से सिद्धांत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो बात हमारी है, ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमने सीखी, उसी आधार पर देश को आगे ले चलने की ज़रूरत है।
प्रतिमा के भारी खर्च पर बहुत से हलकों में विरोध हो रहा है। कुछ लोग तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ऐसी मूर्ति क्यों नहीं बनाई गई। लेकिन इन सब से हटकर असल बात ये है कि हर राष्ट्र के कुछ नायक होते हैं और उन्हें याद रखना, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना हर राष्ट्र का कर्तव्य होता है। और ये भी निश्चित है कि किसी भी राष्ट्र के नायक व महानायक और क्रांतिकारी को श्रद्धांजलि का सबसे अच्छा तरीका उसके सपनों को साकार करना और उसके आदर्शों पर चलना होता है।